ಗದಾಧರ ಶಿವ ಶತಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಯ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಶತಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ
ಜಯ ಗೌರ
संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुकाचार्य अष्टोत्तर सतजीवान ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन डीवी टीवी आई फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड मोस्ट मर्सिफुल एसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विश्वपाद परमहंस प्रवकाचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिदंडी गोस्वामी महाराज की नामाचार्य शिलादास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की प्रेम से कहूं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा शरि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा गिरिधारी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा मैया की यमुना मैया की श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की All glories to the Sambal devotees, all glories to the Sambal devotees, all glories to the Sambal devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Sri La Prabhupada, Savior of the whole world, the most merciful, A.C. Bhaktivedanta Swami, Sri La Prabhupada Ki Jai. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवती नैष्ठके हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद दस अध्याय 11 श्लोक श्रृंखला 27। आइए इस श्लोक का उच्चारण करेंगे और श्लोक में आए शब्दों से अपने आप को परिचित करते हुए श्लोक के शब्दों का उच्चारण पहले करते हैं। यावत् औत्पाटिका अरिष्टा व्रजन् नाम अभिभावितः आव बालान उपादया यश्यामः। अन्यत्र सा अनुगह यावत् औत्पत्तिको अरिष्टो यावत् औत्पत्तिको अरिष्टो व्रजन् नाभि भवेत् इतः व्रजन् नाभि भवेत् इतः तावत् बालान् उपादया तावत् बालान् उपादया यश्यामो अन्यत्र सानुगः। यश्यामो अन्यत्र सानुगः यावत् औत्पाटिको अरिष्टो व्रजन्नाभि भवेत् इतः तावत् बालान् उपादया यश्यामो अन्यत्र सानुगा यावत् औत्पाटिको अरिष्टो व्रजन् नाभि भवेत् इतः तावत् बालान् उपादय यश्यामो अन्यत्र सानुगः हरिष्टो भजन् नाभि भवेत्ता उत्पाटिको अरिष्टो भवेत् तावत् बालान् उपादय यश्याम् तावदोत्पाटिको अरिष्टो भजन्नाभि भवेत् तावत् बालानुपादय यश्यामित्र वैष्णवी यावत् शब्दार्थ इस प्रकार है याव जब जब औत्पातिक उत्पात मचाने वाले अरिष्ट अरिष्टासु व्रजम यह गोलोक ब्रजभूमि नाम नहीं अभिभावेतितः स्थान से चले जाए तावत् तब तक बालान उपादया बालकों के लाभ के लिए यश्याम हम चले जाएं अन्यत्र किसी दूसरी जगह स अनुगाह अपने अनुयायियों समेत अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह सारे उत्पात कुछ अज्ञात असुर द्वारा किए जा रहे हैं। इसके पूर्व कि वह दूसरा उत्पात करने आए, हमारा कर्तव्य है कि हम तब तक के लिए इन बालकों समेत कहीं और चले जाएं, जब तक कि ये उत्पात बंद ना हो जाए। तात्पर्य उपानंद ने प्रस्ताव रखा, भगवान विष्णु की कृपा से कृष्ण अनेक घातक घटनाओं से सदा बचता रहा है। अब हमको चाहिए कि किसी और आक्रमणकारी असुर से मृत्यु का कारण उत्पन्न होने से पहले हम इस स्थान को छोड़कर किसी और दूसरे स्थान चले जाएं, जहां हम अविचलित रहकर विष्णु का पूजा कर सकें। भक्त की यही अभिलाषा रहती है कि वह अविचलित भाव से भक्ति करता रहे, किंतु हम देखते हैं कि नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों के बीच भगवान कृष्ण के होते हुए भी उत्पात हो रहे थे। हाँ, यह दूसरी बात है कि हर बार कृष्ण विजयी होते रहे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि तथाकथित उत्पातों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के साथ अनेक उत्पात होते रहे हैं, किंतु हम अपना आगे बढ़ाना नहीं छोड़ सकते, उल्टे संसार भर में हम इस आंदोलन का बड़े उत्साह से स्वागत कर रहे हैं और दुने उत्साह से कृष्ण भावना अमृत विषयक साहित्य खरीद रहे हैं। इस तरह प्रोत्साहन तथा उत्साह दोनों रहते हैं। कृष्ण के समय में भी ऐसा ही था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोआभिसं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं स्वगना रघुनाथान्वितां तां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। परम मंगल श्रीमद् भागवतम महापुराण वैष्णव संतों का ये परम धन है। परमहंस संहिता परमहंस चक्र चूड़ामणि शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज जी उन प्रभु के दिव्य चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। गंगा के तट पर जहाँ आमरण अनशन व्रत परायण महाराज परीक्षित जी लगभग 4-5 दिन से उन वृंदावन चंद्र भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पे जब प्रसंग का वर्णन किया जा रहा है तो बहुत ही भाव से भरा हुआ है, भक्ति प्रेम से लबालब भरा हुआ है। भाव ब्रजवासियों का, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम का, कृष्ण के लिए हम सब कुछ निचावर करेंगे। हम कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण हमें बड़ा ही प्यारा है। कृष्ण का आकर्षण समय से बढ़ता जा रहा है इन ब्रजवासियों के बीच में। यहां पे नंद महाराज के जो बड़े भाई हैं उपनंद, वे सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा करके कह रहे हैं कि देखिए, हम सब भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और हम सदैव कीर्तन में लगे रहे हैं, भगवान के भजन में लगे रहे हैं। नित्य प्रातः से लेके शाम तक हम भगवान के भजन में लगे रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। हमारा भजन निरंतर चलता जा रहा है। और जब नंद के आनंद भयो, जब नंद के घर में ये बाल गोपाल कृष्ण आए, तब हमारा भजन और भी बढ़ गया। पर इन भजन को इसमें विक्षेप और इसमें हर प्रकार का रुकावट लाने अनेक अनेक असुर आ रहे हैं। जय श्री श्री राधा गिरिधर जी की, जगन्नाथ देश भद्रा मैया की, श्री श्री गौर नीताय की जय। यह असुर इतना ही नहीं, सीधा राम और कृष्ण के ऊपर हमला कर रहे हैं। पूतना आई, सकासुर आए और त्रिनावत भी आए। अब तो दो बड़े बड़े वृक्ष के बीचों बीच वे गिरे और ये विष्णु का बड़ा कृपा है कि विष्णु उन्हें बड़े बड़े खतरा से बचाते आए। सीधा अब तक जितने भी असुर आए हैं वो सीधे नंद महाराज के घर में जाके हमला किए, जैसे पूतना आकर उनके घर से ही उठा के लेके गए। अगर कोई हम अपने अपार्टमेंट में हैं, घर में है या बंगले में है और कोई बंदूक लेके गोली चलाने लगे, घर वाले क्या कहेंगे? छोड़ो छोड़ो, ये जगह छोड़ के दूसरे जगह जाते, इतने खतरा है। सकटासुर वो सकट के नीचे वो प्रांगण में ही था और वो असुर से मारा। माँ यशोदा कृष्ण को थोड़े अपने आंगन में क्या लेके नहीं गई, त्रिनावत उठा कर लेकर गए। तो इतना भय उत्पन्न हो गया था। सच में घर में अगर किसी का ऐसा उत्पात हो तो डर उत्पन्न होगा, स्वाभाविक सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए। घर में ही ऐसा खतरा हो जाए, कोई टाइम बॉम्ब फेंके, कोई ऑटम बॉम्ब फेंके, कोई गोली से, तो घर वाले सब चिल्लाएंगे, बोलेंगे छोड़ो ये जगह, कौन रहेगा यहां पे। ये सत्य घटना है। हमारे मंदिर के भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, एक नया घर में आ गए, गृह प्रवेश हो गया और भक्तों को कीर्तन वगैरह हो गया। कुछ दिन के बाद बड़े परेशान लग रहे थे, उनके रात के नींद उड़ गए थे, उनके होश गायब हो गए थे। तो बोला बात क्या है? तब बताया कि पता नहीं रात में आवाज सुनाई पड़ रहा है। क्या आवाज सुनाई पड़ रहा है? तो बोले कुछ नहीं, पायल के झनकार का, छन 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 छन। ओह, और कभी कभी सोते सोते कोई जगा देता है। अच्छा, और क्या होता है? और किचन में बर्तन गिरते हैं कभी कभी रात। तो बस अभी हम वहां नहीं रहना चाहते। क्यों? अड़ोस पड़ोस से हमने पूछा बात क्या है, तो बताया कि कोई बात नहीं,
आपके जो पड़ोस में है जो सेठानी थी, किसी कारण से वहां पे एक सेठ और सेठानी के बीच झगड़ा हो गया और तेल जो था उबालता हुआ उसमें पकोड़ा को फ्राई करना था, सेठ जी गलती से अपने सेठानी को फ्राई कर दिया। तो बस तभी से ये छन छन का आवाज सुनाई पड़ रहा है, तभी से वो अपना बोरिया बिस्तर उतार के दूसरे घर पे आ गया। कहने का तात्पर्य यह है, अगर खतरा घर पे ही हो जाए तो स्वाभाविक है घर वाले वो जगह छोड़ देंगे। तब उपानंद महाराज जो है वो कह रहे हैं कि इससे पहले हम लोग नंदीश्वर में थे, नंदीग्राम में थे, वहां पे एक असुर था, उसका नाम था अरिष्ट्रासुर। वो बहुत उत्पात मचाया था, इसलिए हम ये हमारा जो राजधानी है नंदीश्वर वहां पे नहीं जाएंगे, वो छोड़कर हम यहाँ पे आए महावन में, ये बांडिर वन में है, बांडिर वन में गोकुल जहां पे कृष्ण का जन्म हुआ यहाँ पे हम हैं, पर यहाँ पे भी लगता है असुर हमें मार रहे हैं, तो चलते हैं। ये जो बांडिर वन है इसे महावन भी कहते हैं, वो और नंदीश्वर के बीच में एक स्थान है जिसे वृंदावन कहते हैं, बहुत ही रमणीय स्थान है और वहां पे जरूर कोई खतरा नहीं होगा। वहां पे उस स्थान में आप सब जानते ही होंगे कि महान संत मुनि सांडिल ऋषि का आशीर्वाद है कि कोई असुर वहां पे खतरा उस क्षेत्र में नहीं करेंगे, कम से कम कुछ क्षेत्र में इसका हमला नहीं होगा। चलो हम वहीं चलते हैं, आप सबका क्या राय है? तो ऐसा चर्चा जारी है, क्योंकि एक के बाद एक खतरा होते जा रहे हैं। वास्तव में ये उपनंद के हृदय में स्थान छोड़ने का जो विचार है वो भगवान प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि अब कृष्ण सारे ब्रज का आनंद लेना चाहते हैं। कृष्ण अपने ब्रज के सारे वृक्ष पशु पक्षियों के साथ लीला करना चाहते हैं, साथ ही अपने ब्रज गोप और गोपियों के साथ भी लीला करना चाहते हैं। कृष्ण का जन्म से का जब वर्णन आता है तब हम देखते हैं कि यशोदा मैया उन्हें गले से लगाते हैं और कृष्ण को किसी के हाथ देते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया जो है उनको कृष्ण का प्राप्ति, जैसे हम सब जानते हैं, उनके जीवन के चौथे अवस्था अर्थात वृद्ध अवस्था में प्राप्त हुआ। कौमार चला गया, यौवन चला गया, वृद्ध अवस्था में सारे ब्रजवासियों में नंद महाराज और यशोदा मैया बड़ा प्यारे हैं। वो क्यों? क्योंकि नंद महाराज स्वभाव से हर ब्रजवासियों का ही नहीं, ब्रज के हर जीव से प्रेम करते हैं। स्वभाव से उनका यह स्वभाव है, हर जीव से, और ब्रजवासियों को इतना प्रेम दिया, सारे ब्रजवासी भी नंद महाराज को उतना ही प्रेम करते हैं, और यशोदा मैया कुछ कम नहीं है, इतना प्रेम देते हैं, सारे ब्रजवासियों को अपना मानते हैं, अपने परिवार के मानते, पूरे ब्रज को अपने परिवार मानते हैं। वासुदेव कुटुंबकम, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं अद्वैष्ट सर्वभूतानाम, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, किसी से द्वेष की बात नहीं आता है, मैत्रीय करुणा एवच, हर से मैत्रीय रखते हैं और करुणा हर जीव के प्रति, किसी वृक्ष को काटने नहीं देते, इसे फल और इसे अच्छी तरह से उगने का पूरा व्यवस्था करते हैं, हर गाय को, हर मोर को, हर पशु को, हर पक्षी को इतना सुविधा दिए हैं नंद महाराज। और जब ब्रज का राजा को उपनंद, ब्रज का जो राजा उपनंद को चुना गया था, चुना नहीं गया था, वैसे उनके पिताजी ने उपनंद को राजा बनाया, पर उपनंद ने तुरंत वो मुकुट जो है ब्रजराज का कि मैं नहीं नंद महाराज होंगे, परजन्य उनके पिता हुए, बोले कि नहीं मैं तो राजा अगर हूंगा तो बाय डिफॉल्ट सीनियर होने के कारण मैं अपने आप बन जाऊंगा, पर उपनंद में सारा गुण पाया जाता है, वेरी नाइस, तो बहुत ही योग्य है, हर कोई उसके बात को हृदय से स्वीकार करता है। और मैं भी चाहता हूं कि नंद ही राजा बने, तो वो मुकुट जैसे रखते हैं, कहते हैं कि आकाश से पुष्पों का वृष्टि हुई, नंद महाराज ने इतना प्रेम दिया है। नंद महाराज का दुख अगर कुछ है तो यही था कि उनको संतान नहीं हो रहा था, वही दुख सारे ब्रजवासियों को हुआ। और जिस दिन कृष्ण उनके जीवन में आए तो ब्रजवासियों का सुख बढ़ गया, और विशेष रूप में यशोदा मैया कृष्ण से खूब प्रेम करने लगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जैसे जैसे इस भौतिक जगत में भी देखेंगे, किसी मां को, किसी स्त्री को जब मां बन जाती है तो अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, और उसमें भी अगर वृद्ध अवस्था में उनको संतान की उत्पत्ति हो जाए, जब देखते हैं कि उनके उनसे छोटे उनकी छोटी बहन उनका भी विवाह हुआ, वो भी मां बन गई, फिर उसके बाद और भी छोटे जो थे वो भी मां बन के जा रही है। हमारे परिवार में मेरी जो बड़ी बहन लगती है, चचेरी बहन बोलते हैं, तो उनके विवाह होकर लगभग 30 साल हो गए, तो विवाह होकर अनेक समय बीत गया, फिर उनकी छोटी बहन आए, उनका विवाह हो गया, वो मां बन गई, पर ये मां नहीं बनी थी। तो हाल ही में कुछ दिन पहले हमें खबर मिला कि वो मां बन गई, तो इतना सुख हुआ, इतना सुख हुआ, वैसे तो रिश्ता तो कुछ है ही नहीं, फिर भी अच्छा लगा कि ठीक है। तो मैं वही सोच रहा हूं, जिस प्रकार से वृद्ध अवस्था में नंद महाराज को अगर कृष्ण प्राप्त हुए तो कितना सुख और आनंद उनको मिला होगा, और पूरे परिवार में एक आनंद का माहौल छा गया। इसी प्रकार से ब्रज में कितना आनंद आया होगा, ये मैं सोचते रहा कितना। पर नंद महाराज और कृष्ण यशोदा से इतना प्रेम कर रहे थे कि कृष्ण यशोदा को छोड़ नहीं रहे थे, पर कृष्ण इतने सुंदर है और इसकी उनकी जो सौंदर्य का वर्णन पूरे ब्रज में फैल रहा था, सारे ब्रजवासी चाहते थे कि कृष्ण अब हमारे घर में आए, कृष्ण हमारे घर में भी आए तो कृष्ण अब माखन चोरी का लीला प्रारंभ किए, तो उनका इच्छा पूरा किए। तो इस प्रकार से कृष्ण के जो सखा है वो कृष्ण से अधिक प्रेम करने लगे, बोले कि ये जो बालक है इतना सुंदर है, हमारे साथ खेलते तो क्या होते, तो कृष्ण अब बालकों के साथ खेलने लगे। पर यहां पे गोकुल में जितने दिन बिताए, लगभग 3-4 साल बीत गए, पर एक के बाद एक खतरा होने लग गया। तब उपनंद महाराज बोलते हैं, नहीं अब बहुत हो चुका है, हम यहां स्थान को छोड़कर चले जाएंगे, हम दूसरे स्थान में जाएंगे जहां पे कृष्ण और बलराम को कोई खतरा ना हो। अब देखिए ये ब्रजवासियों का क्या प्रेम है, कितना लगन है, कितना स्नेह है कृष्ण के प्रति, किसी ने ये सोचा भी नहीं, कहने की बात तो दूर, कि जब से ये बालक आया तब से हमारा ब्रज में एक के बाद एक खतरा आने लग गया, किसी ने ऐसा नहीं किया। हम देखते हैं एक साधारण परिवार में अगर कोई नई बहू आ जाती है और कुछ घटना हो गई, तब बोलते हैं ये घर का लक्ष्मी नहीं है, ये और कुछ है, इसे निकालो घर से, लोग बातें करने लग जाते हैं। जब से ये बच्चा जन्म लिया तब से उत्पात होने लग गया, बोलते हैं ये लगता है हमारे जीवन के लिए शुभ नहीं है, ऐसे बोलते हैं। पर कृष्ण इतने प्यारे हैं कि सब कहा कि नहीं, कृष्ण को हर परिस्थिति में हमें रक्षा करना चाहिए, और अगर कोई हमें बचा रहा है तो वो है विष्णु। सच में क्या हो रहा था, ब्रजवासी जो हैं वे नंदीश्वर को छोड़ के बांडीरवन या महावन आए और वहां पे रोज भजन करते रहे, और जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन से भजन और बढ़ गया। वो सोच रहे हैं हमारे भजन के कारण, रात और दिन भजन के कारण ये कृष्ण को पूतना इत्यादि असुरों से रक्षा प्राप्त हो रहा है, ये इनका भाव है। बोला कि हमें और भजन करना है, पर इस स्थान में अगर भजन करेंगे खतरा बढ़ता जा रहा है, एक और स्थान जाते हैं जहां पे कोई खतरा नहीं, और वो है वृंदावन। तब ये सब निकल पड़ते हैं। पर किसी ने ये नहीं कहा कि कृष्ण और बलराम को और ये नंद महाराज के परिवार को अलग रखो तब हम शांत हो जाएंगे, किसी ने नहीं कहा, और कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कृष्ण उनके हृदय के एक स्थान प्राप्त किया है। जैसे कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मई आवेश मनो ये माम नित्य उक्त उपासते, आवेश हो गया, कृष्ण को देखना ही है, कृष्ण से बातें करना ही है, कृष्ण के साथ खेलना ही है, ये भाव उनका है। मई आसक्त मनो ये माम, आसक्ति उनका बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से वह कृष्ण को छोड़कर और कोई बात छोड़ नहीं सकते, सोच नहीं सकते हैं, ऐसा भाव है, यह है वृंदावन। अब ये जो है सब सोच रहे हैं कि यही कृष्ण और बलराम का रक्षा के लिए हम ये स्थान छोड़ के जाएंगे, और ऐसे स्थान में जाएंगे कृष्ण और बलराम का पूरा रक्षा हो, और आगे जाके वो सब एकत्रित होके जाएंगे, और आगे हम देखेंगे जहां पे वो ठहरे हैं वो नंद भवन में, उनके घर में कोई खतरा नहीं। कृष्ण जब जंगल में जाते हैं तब एक एक करके असुर से युद्ध करते हैं, वो जहां रहते हैं वहां पे कोई खतरा नहीं। अब इसी प्रकार का जो सुंदर भाव है हम अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए। जब हम शुरू में रहते हैं तब भगवान से प्रार्थना करते कि हमारा रक्षा करो, पर जैसे जैसे भक्ति में हम अग्रसर हो जाते हैं तब हम सोचते हैं कि कृष्ण का कैसे रक्षा हो। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं कि सभी कृष्ण को या भगवान को अपने पिता मानते हैं, ये भाव अच्छा है, पर इससे भी बड़ा भाव यह है कि कृष्ण का हम पिता बने, जैसे नंद महाराज या वसुदेव, यह और भी ऊंचा भाव है। लोग प्राय कृष्ण के पास आते हैं, भगवान के पास आते हैं, कहते हैं कि हमें आज का भोजन दो, पर इससे भी बड़ा भाव यह है कि कृष्ण को हम अपने हाथों से कुछ खिलाएं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से कुछ खिलाओ और कृष्ण हमसे पाए, ये सुंदर भाव है। क्या कृष्ण के पास खाने की कमी है? नहीं, वो भाव के कमी प्यासे हैं या भाव के भूखे हैं, वो सबको खिला रहे हैं पर भाव के भूखे हैं, पर वो भाव वो हमसे चाहते हैं, यह कृष्ण। तो कृष्ण चाहते हैं कि हम उन्हें उनका रक्षा के लिए चिंता करें। वैसे हम शुरू शुरू में आते हैं तो बोलते हैं कृष्ण हमारा रक्षा करो, जैसे अर्जुन भी खतरा को जब परस्पर देखने लगा और ब्रह्मास्त्र को, तो कृष्ण के पास गए, ये भी एक भाव है, अच्छा है, तो कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम अभयंकरा तम एको दायमानाः अपवर्ग असी संस्कृते कृष्ण कृष्ण महाभाव। देखते कि एक बड़ा खतरा आ रहा है मेरे जीवन में, एक ब्रह्मास्त्र जो ये कौन छोड़ा था, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र ने छोड़ा था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, एकदम नजदीक आ रहा था तो चिल्लाने लगा कृष्ण कृष्ण महाभाव। वैसे हम भी खतरा आने पर कृष्ण के पास ही जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण हमारा रक्षा करो। जैसे उत्तर देवी भी जब देखती है कि खतरा एकदम नजदीक है, उनके गर्भ तक गई है, तो कहते हैं दोनों हाथ चिल्ला उठाकर, वही कृष्ण जो अब हस्तिनापुर छोड़कर द्वारिका जा रहे हैं, तो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, प्रार्थना करने, केवल आप मेरा रक्षा कर सकते हो। पाई पाई महायोगिन देव देव जगत फते, हे कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण आप सबसे बड़े योगी हो, देवताओं के देवता हो और सारे जगत के पति हो, आप मेरा रक्षा करो। नान्यत्वाद अभयम यत् पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु निकट है और किसी और कोई नहीं है जो मेरा रक्षा कर पाएगा। तो ये उत्तरा जो है ये प्रार्थना कर रही है कृष्ण से, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, बोला ये किस आपको किसने सिखाया, यहाँ पे आपके बड़े बड़े आपके पिता जैसे युधिष्ठिर भी निधि आदि है, पर कहा कि मेरी माँ द्रौपदी ने सिखाया कि कोई काम नहीं आएगा जब खतरा होगा तो, जब खतरा होगा तो एक और एक केवल कृष्ण गोविंद ही रक्षा करेगा, मैं इसका ज्वलंत उदाहरण हूं। क्योंकि जब खतरा होगा सब देखते रह जाएंगे और ये परिस्थिति उनके वश में भी नहीं रहेगा। युधिष्ठिर देखते रह गया, अर्जुन देखते रह गया, भीम और भीष्म पितामह तक देखते रह गए। तब कहते हैं कि द्रौपदी सभी के ओर देखते 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 वे अपने कुल गुरु के ओर देखते हैं, तब उनके जो कुल गुरु है, उनके जो गुरु है कृपाचार्य, वो इशारा करते हैं किसको देख रही हो, किसको याद कर रही हो, इशारा करते हैं। और द्रौपदी बुद्धिमान थी और कहते हैं ना बुद्धिमान को इशारा काफी है। कृपाचार्य ने इशारा किया कि किसको पुकार रही हो, किससे आप रक्षा की उम्मीद कर रही हो, एकमात्र वो ऐसे इशारा किए थे, एकमात्र ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, तब वो समझ गए एक और एक केवल एक ही भगवान कृष्ण है। तब वो दोनों हाथ ऊपर करके हे गोविंद करके पुलाते और तब जाके कृष्ण जो है द्वारिका छोड़कर तुरंत प्रकट हो जाते हैं और साड़ी के भांति प्रकट होकर उनका लाज का रक्षा करते हैं। वो द्रौपदी जो है उनको शिक्षा दिया तो बोलते अच्छा इसीलिए आप मुझे याद कर रहे हो, कोई बात नहीं। तब कृष्ण उस ब्रह्मास्त्र और परीक्षित महाराज के बीच आते हैं और उनका रक्षा करते हैं। वैसे यही कृष्ण से हम रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, ये बड़ी बात है, पर भाव ऊंचा तब होगा जब इस कृष्ण का रक्षा के लिए हम चिंता करने लगे। जैसे जुहू के जो मंदिर है, राधा राज बिहारी जी के मंदिर में जब हमला हो रहा था तब प्रभुपाद जी एकदम चिंतित हो गए और कहा अपने सारे शिष्यों से कि तुरंत आप, वो सोए नहीं पूरे रात, एक एक को फोन किए, बताए कि आप तुरंत इस प्रांत में जितने भी नेता है उन सबको फोन करो, कहा कहो कि एक मंदिर पे, हिंदू मंदिर पे एक हमला हो रहा है। तो इस प्रकार से कृष्ण की रक्षा के लिए प्रभुपाद जी चिंतित थे, ये एक ऊंचा भाव है। जब रशिया में भगवद गीता का ऊपर पूरा रोक टोक लग गया था, कथाकथित धर्म नेताओं के द्वारा ये आरोप था कि ये वैष्णव ग्रंथ का अगर प्रचार होगा तो पूरा रशिया वैष्णव कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तब हमारा कथाकथित धर्म का क्या होगा, ऐसा उनका भय था। और सरकार से वे पूरी तरह से सरकार को भावित कर दिया कि आप जाके इस रोक टोक करो। तब भगवत गीता पे जब रोक टोक हुआ, भारत में अनेक अनेक धर्म नेता एक साथ उठ गए, सभी नेता धर्म नेता इस आरोप के ऊपर को गलत स्वीकार किया। और यहां पे हमें भक्तों द्वारा कुछ बातें पता चली, तब हमारे नित्य वंदनीय पूजनीय परम पूज्य श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी वे चिंतित थे, रात को सोए नहीं, वे अपने आहार वैसे ही कम लेते हैं, उसे भी कम करके कहा कि जब तक इस गीता के ऊपर आरोप जो रोक टोके नहीं जाएगा तब तक हम दूध भी नहीं लेंगे, तो वो भी रोक दिया था। वैसे कम खा रहे थे और कम कर दिया, भक्त लोग और चिंतित हो गए, पर महाराज जी का भाव था कि ये जो धर्म के ऊपर संकट आया है, कृष्ण भगवत गीता के रूप में प्रकट हो रहे हैं, उसके ऊपर खतरा आया है, उस खतरा को कैसे हम दूर करें। और अनेक अनेक भक्तों को वो मिले और अनेक अनेक नेताओं के माध्यम से उस आरोप के जो था उसे झूठा साबित किया और भगवत गीता का रक्षा किए। हमारे जीवन में भी हम व्यक्तिगत रूप में अगर देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि मोरा मन वृंदावन, हमारा मन जो है वास्तव में इसे वृंदावन बनाना चाहिए और इस वृंदावन में हमें कृष्ण को लाना है। कहते हैं ना, यह है जगन्नाथ रथ यात्रा। रथ यात्रा में क्या होता है, कुरुक्षेत्र से हम वृंदावन में, हम गुंडीचा मंदिर में जिसको वृंदावन कहते हैं, कृष्ण को लाते हैं, जगन्नाथ जी को लाते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि वो कृष्ण को हमारे हृदय में एक स्थान देना, ये असली रथ यात्रा है। जब कृष्ण को हम अपने हृदय में स्थान देते हैं, अर्थात मन को पूरा भक्तिमय रखना चाहिए, भक्ति से लबालब रखेंगे तो कृष्ण हमारे हृदय में आएंगे। ये मन को वृंदावन बनाने का अर्थ है कि इस मन में कृष्ण को स्थान देना है। दूसरे शब्दों में इस मन को इतना प्रेम से भक्ति से भर के रखना चाहिए कि कृष्ण सदैव रहें, और इस प्रेम से भरा हुआ वृंदावन रूपी मन में कभी कोई असुर काम क्रोध लोभ जैसे असुर घुसे नहीं, या काम का हमला हो या क्रोध का हमला हो, इन सब से कृष्ण को या हमारे भक्ति को बचा के रखना चाहिए। इस प्रकार का भाव हमें ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से उपनंद महाराज, नंद और सारे ब्रजवासी यही चिंता में है कि कृष्ण का रक्षा कैसे हो, इसी प्रकार से हम भी सदैव अपना भक्ति के बारे में चिंतित रहे कि कैसे हमारे हृदय में सदैव कृष्ण रहे, कहीं गलत संग या गलत विचार हमारे मन में ना आए, ये सदैव इस प्रकार का भाव हमारे मन में ग्रहण करना चाहिए। उपनंद जैसे भाव को हमें ग्रहण करना चाहिए, तब जाके धीरे से क्रमशः हमारा चेतना का उन्नति होगा। आज हम भगवान से कहते हैं कि हमें ये दीजिए भगवान, हमारी रक्षा कीजिए, हमें धन दीजिए, ये अनेक अनेक चीजों का मांग करते हैं। ये शुरू की अवस्था में होता है, पर धीरे धीरे चेतना का उन्नति होने के बाद हमारा चेतना उतना उन्नत हो जाता है, फिर हम कहते हैं भगवान से अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। कांचन विचिन्वान अपि दिव्य रत्नम् स्वामी कृतोऽस्म्यहम् वरम् नयाचे। जब हमारा चेतना उन्नत नहीं रहता है तब हम कहते हैं भगवान मुझे धन चाहिए, एक सुंदर गाड़ी चाहिए, एक महल चाहिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। ध्रुव महाराज जैसे प्रार्थना करते हैं, पर वही ध्रुव महाराज का चेतना जब उन्नत हो गया तब कहते हैं वरम न याचे, अब कोई वर नहीं चाहिए, दिव्य रत्न प्राप्त हो गया आपका भक्ति रूपी। तो इसी प्रकार से ऐसा चेतना का उन्नत हो जाएगा तब हम कृष्ण से कुछ मांगेंगे नहीं, उल्टा हम कहेंगे कृष्ण हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इस भाव को प्रभुपाद जी कहते हैं और भी ऊंचा है। तो इसी प्रकार से हम अपने मन को वृंदावन बनाएं और इस वृंदावन का जो भाव है भक्ति का सदैव बनाए रखें, इस भक्ति रूपी जो भाव प्रेम है इसके पर कोई खतरा न आए, ऐसा हमें भक्ति करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। ये कृष्ण के लिए बहुत ही कृष्ण को बहुत ही पसंद होगा, ऐसा जब हमारा भाव होगा तो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की, किसी का एकाध प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। घर में क्या हो गया? आगे वो घर खाली किए। जैसे 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 पूतना जो है, आपका सवाल है कि पूतना उनके घर में आके हमला किए, घर के यही है ना, घर में जाके उत्पात, कृष्ण के घर में यानी कि यशोदा मैया और नंद महाराज के घर में, ये नंद भवन में जितने भी असुर थे ये सारे नंद भवन के अंदर ही आके हमला करने लगे। जैसे पूतना आए, फिर सक्तासुर आए, ये भी उनकी आंगन के अंदर हुआ था, और त्रिनावत जो आए तो आपका अच्छा अच्छा ठीक है, उनके घर में वो आवाज सुनाई पड़ रही थी छन 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 छन, वो उसका वो उदाहरण की बात कर रहे हो, मैं केवल वो उदाहरण पेश कर रहा था कि देखिए जैसे एक सामान्य परिवार में या लोगों में हम देखते हैं, अगर घर में ही उत्पात मचता है, कोई दरवाजा तोड़ता है या घर पे पत्थर फेंकता है तो हम बोलते हैं अरे ये जगह छोड़ो या दूसरी जगह जाते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रजवासी भी देख रहे थे कि बार बार हमला हो रहा है, वो ये नहीं सोचे कि कृष्ण भगवान है हम वही हमारा रक्षा करेगा, नहीं कृष्ण को रक्षा कैसे करें, ऐसा सोचते हुए वो ये गोकुल को छोड़ के बांडीरवन महावन को छोड़ के दूसरे स्थान जाते हैं। अब वो जो परिवार है जिसके घर में ऐसे छन छन आवाज सुनाई पड़ रहा था, वो घर छोड़ के दूसरे घर चले गए। ओके अभी उस घर में आवाज नहीं आ रहे। ओके थैंक यू। पर भाव ये था कि अगर घर में ही उत्पात मच रही है तो कोई घर में शांति नहीं प्राप्त करेगा तो वो घर छोड़ देता है। इसी प्रकार से कृष्ण को के ऊपर हमला हो रहा था तो सारे ब्रजवासी घर छोड़ के दूसरे घर चले गए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, उपनंद की, नंद महाराज की, यशोदा मैया की, ब्रजवासी की, श्री वीर ऑफ द होल वर्ल्ड द मोस्ट मर्सीफुल भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।